11 साल 11 महीने 11 दिन वो तो चित्रकूट में ही रहे थे, है ना,
हाँ.
करीब करीब 12 साल हो गए. तो केवल 2 साल के लिए वो चित्रकूट से वापस आया था. लौटने की जगह दंडकारण्य में गए ही क्यों, बिसरक करके गांव है जो गांव रावण का जन्मस्थान माना जाता है, वहां पे सुबह शाम आरती होती है रावण के नाम पर, प्रसाद भी अपने ले सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं. परेरा ने हमको बताया कि वो इसलिए नहीं बता रहे थे, लोग मानते हैं कि हमारा जो राजा रावण है वहां पे काफी भी निद्रासीन है, वहां पे रहता है, सो रहा है वहां पे. तो अगर लोग वहां जाएंगे और अनिश्चित वर्ष वहां जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, और अगर वो डिस्टर्ब होकर उठ गया तो श्रीलंका का क्या हाल करेगा या भारत का क्या हाल करेगा हम नहीं कह सकते. लोग एक जगह बैठे थे जहां पे चर्चा चल रही थी, तो चर्चा के दौरान विक्रांत पांडे ने मुझसे पूछा, हम लोग घूमते हैं बहुत ज्यादा, मैं और मेरे को ऑथर हम लोग इकट्ठा बहुत ज्यादा घूमते हैं, पुराने मित्र हैं. तो उसने जयपुर के होटल में मुझे पूछा, तुझे पता है चित्रकूट कहाँ है? तो मैंने उनको बताया चित्रकूट यहाँ कहीं है नक्शे में, बोलता है 500 स्क्वायर किलोमीटर है, तुझे पता है यहाँ पे कहाँ है चित्रकूट? जब हमने देखा कि अपने को तो पता नहीं है, तो हमने बहुत लोगों को पूछा कि चित्रकूट क्या है, कहाँ है और वहाँ क्या हुआ था, बहुत लोगों को नहीं पता था. तो हमारी अपनी जिज्ञासा जागृत हुई कि भैया ऐसा ऐसा क्यों नहीं लोगों को पता, और जो अगर ये इतनी महत्वपूर्ण जगह है रामायण में तो लोगों को क्यों इसके बारे में मालूम नहीं है, चलो देख के आते हैं और अगर कुछ अच्छा लगा तो इसमें से किताब बन जाएगी. तो ये सोचकर हम लोग वहां गए थे, लेकिन जब गए तो हम इतने खो गए और हमने देखा कि प्रभु श्री राम की लीला में इतना कुछ है कि मतलब हमारी तो जब तक उनकी आशीर्वाद ना हो तब तक हम इसे लिख नहीं सकते. तो उनके आशीर्वाद से शायद ये प्रेरणा मिली कि इसको किताब के रूप में बनाना चाहिए, और उसी से हम इतनी हिम्मत जुटा पाए कि ऐसी ऐसी जगहों में नदियों में हम घुटना घुटना पानी और जांग तक आए हुए पानी में चलते हुए गए, पहाड़ों पे चढ़े, गुफाओं में उतरे, और ये सब चीजें इस मतलब आई एंड माय वाइफ आर 60 प्लस, विक्रांत है लेट मिडिल 50s में है, तो फिर भी हम इसको कर पाए उसके लिए इसलिए कि उन्होंने शायद हमें शक्ति प्रदान की और ये हुआ.
यस, तो सर टेकिंग दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर, आपने जैसे अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे एडवेंचरस जो हम वाइब कहते हैं वो आपको मिली क्योंकि पानी इतना ज्यादा या गुफाएं थी जैसा बुक में भी मेंशन्ड है. तो कुछ ऐसी कहानी है जहाँ पे आपको ऐसा बहुत मतलब स्पिरिचुअल वाइब्स मिले ऐसी कोई एक रिमोट प्लेस पे जाके?
ऐसा होता है, ये स्पिरिचुअल वाइब एक ऐसी चीज है जो आप चाह कर या मांग के नहीं ले सकते. आप कहें कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ तो श्रीराम लला के मंदिर में जा रहा हूँ तो वहां जाऊंगा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, तो वो कहीं आपका आपका अधिकार नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप अधिकार से कहेंगे मुझे तो चाहिए अभी, ये आपके साथ हो जाता है, आपके साथ अपने आप होता है. तो ऐसी जगहों पे हो जाता है जहां पे आपको उसकी बिल्कुल आशंका भी नहीं होती कि ऐसा होगा, कि आपको लगता भी नहीं कि होगा. तो एक उदाहरण ऐसा है कि जहां पे राजापुर में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थल पर गए थे उनके घर में, तो उस घर को जो परिवार चलाता है वो उनके एक गोस्वामी जी के शिष्य थे जिनका जिनके जो अब वंशज है उसको उसकी देखभाल करते हैं. वहां एक गोस्वामी जी का और प्रभु राम का एक मंदिर है. तो वहां पर पिछली शायद 12 या 14 पीढ़ियों से निरंतर 2400 घंटे रामचरितमानस का पाठ होता है. तो हर समय हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई आता है और वो उसको चालू रखता है. रामचरितमानस का पाठ वहां कभी बंद नहीं होता. तो वहां हम गए, वहां जाके बैठे, तो वो जो उपाध्याय जी थे वहां के जो पंडित जी थे उन्होंने हमें सब समझाया वगैरह. हमने कैमरे निकाले तो उन्होंने हमसे कहा नहीं आप यहाँ में फोटो नहीं खींचने देता. पिछले हफ्ते तो कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा मेरा एक फोटो खींच ले दीजिए. मैंने उनको बिल्कुल मना करके बाहर कर दिया कि आप नहीं खींचेंगे. तो हम ने कहा ठीक है, जो भी जगह की मतलब गरिमा है उसको बना के रखना हमारा कर्तव्य है, हम तो एक ही बार गए हैं वहां पे. तो हम लोग वहां बाहर निकले. जब हम बाहर निकले और हम अपना जूता का पहन रहे थे तो उन्होंने फिर मुझे इशारा कहा कह रहे कि तुम फोटो खींच लो. क्या लगा उन्हें, क्या क्यों उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, क्यों नहीं कहा मुझे नहीं मालूम. हम गए, हमने उसके फोटो खींचे, उसके बाद कहा अब थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ. जब वह बैठे तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा लगा पर अपने आपे से बाहर चले गए. मैंने पूरा बैठे बैठ के उठ के मैंने उन पंडित जी के पैर छुए और पैर छूते मेरा इतना ज्यादा रोना निकला. आप समझिए कि 64-65 साल का व्यक्ति फूट फूट के रो रहा है केवल इसलिए कि मैंने उन पंडित जी के पैर छुए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा. वैसा कई जगह होता है, अपने बड़े सिर पे हाथ रखते हैं, पंडित जी हाथ रखते हैं, गुरु जी हाथ रखते हैं, लेकिन उस दिन मुझे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. तो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण बाकी सबकी आंखों में भी आंसू थे और मैं तो फूट फूट के रो रहा था. अब ये क्या हुआ मुझे उस दिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ इतना बड़ा हुआ है कि उसको शब्दों में व्यक्त करना इस समय संभव नहीं है. तो ऐसा कई जगह पर होता है और छोटी सी जगह पर हो जाता है जो आपको सोच कर किसी भव्य मंदिर में या किसी बहुत ज्ञानी पुरुष के सामने भी आपका आपको वो भावना नहीं आती. और कई बार आप किसी छोटे से मंदिर के एक छोटे से कोने में सामने बैठे होते हैं और एकदम आपके सामने ऐसा लगता है जैसे पूरा विश्व, पूरा अंतराल, विश्व का अंतराल आपके सामने खुल गया.
बिल्कुल
सब कुछ आपको, आप सब सब हर चीज का आप हिस्सा हो गए। एक तो ये
राइट
फीलिंग आती है ना अद्वैत की, आप और बाहर के सब कुछ एक ही है। वो भावना दो तीन चार जगह पांच जगह हमें आई, अलग अलग जगहों पे आई, और
करेक्ट
उसको आप दोबारा जाके भी वहां हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो
बिल्कुल
उस समय ऐसा होना था इसलिए वो ऐसा होगा, ऐसा हुआ।
एब्सोल्युटली। तो सर ये इस बात से तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ, बिकॉज ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़ रहा था एंड आउट ऑफ द ब्लू मुझे नहीं पता, मैं अब तक ये मेरे मॉम डैड को भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ या उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि वो वर्ड्स में नहीं आ सकते। अंदर से मुझे एक फीलिंग आई कि आई नीड टू मेडिटेट राइट नाउ, एंड मैं आज तक मैंने कभी 10 या 15 मिनट से ज्यादा मेडिटेट नहीं किया होगा। उस दिन मैंने मेडिटेशन मेरा सेशन खत्म किया, मुझे लग रहा था कि मैंने 15 मिनट कर लिया है, व्हेन आई गॉट अप एंड मैंने टाइम देखा 2 घंटे हो चुके थे एंड मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ फ्लो हो गया। तो समटाइम्स देर आर सम स्पिरिचुअल वाइब्स जो आप नहीं पता कर सकते कि कब आएगी कैसे आएगी।
देखिए शब्दों की अपनी सीमा है, आप शब्दों से कितने भी आप शब्दों के करीब हो और शब्दों को जानते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन एक शब्द भी तो एक सिंबल ही है आखिर ना, एक भावना का सिंबल है, और कोई भी सिंबल अगर होगा वो प्रतिरूप होगा, वो कभी भी भावना की बराबरी तो कर ही नहीं सकता। आप फूल के सुगंध को बता सकते हैं कि गुलाब का फूल सूंघा और मुझे ये उस पर सुगंध लगी, लेकिन उस सुगंध का जो आनंद है वो आप शब्दों में तो व्यतीत करेंगे, व्यक्त कर नहीं सकते ना।
बिल्कुल
इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है।
राइट तो सर हमने डिसाइड किया कि इस पॉडकास्ट में हम स्टोरीज की बात करेंगे काफी, तो इस पूरी स्टोरी के हम शुरुआत करते हैं श्री राम से। तो रामायण का जब स्टार्ट होता है उन्हें वनवास का वो ऑर्डर मिल चुका है एंड ही गोज फॉर द वनवास, तो फर्स्टली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस फॉरेस्ट जहाँ पे वो रुके थे, दंडकारण्य फॉरेस्ट अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ। तो सर फर्स्टली इसके बारे में हम ओके दंडकारण्य, तो हम इसके बारे में
दंडक राजा था, उनका ही पूर्वज था दंडक राजा, जिसको शाप मिला था, जिस शाप के कारण वो दंडकारण्य कहलाया, जिसमें कुछ नहीं उगता था और केवल भूत प्रेत पिशाच यही लोग यही रहते थे, और एक भी हरा पत्ता नहीं उगता था उसके अंदर, ये उसको शाप मिला था उसको।
राइट तो ये इंडिया में कहाँ आता है इस वक्त, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड?
सेंट्रल इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में। आप एक तरह से समझिए कि चित्रकूट ले लीजिए, टुवर्ड्स अयोध्या से आगे चित्रकूट, चित्रकूट से शुरू होगा, इट गोज थ्रू पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इट एंड्स अप समवेयर नियर नासिक। तो दिस एंटायर जंगल एरिया इन सेंट्रल इंडिया इज एक्चुअली द ओल्ड दंडकारण्य, अंदाजे से देखा जाए।
राइट तो जब हम जैसे आपने भी बुक के लिए आप वहां पे ऑब्वियसली आपने ट्रैवल किया होगा, तो कुछ वहां की स्टोरीज है जो आप बता सकते हैं लोगों को?
दंडकारण्य के एक्चुअली दंडकारण्य में रामायण से संबंधित या राम जी के वनवास के से संबंधित बहुत सारी चीजें नहीं होती, जो चीजें होती है वो या तो दंडकारण्य के इस तरफ होती है, दंडकारण्य के उस तरफ होती है। दंडकारण्य जहां समाप्त होता है वहां पे दंडकारण्य में उनकी मुलाकात होती है, वहां पे वो जाते हैं और वहां पे अल्टीमेटली नासिक में वो रहते हैं जाके, जहाँ पर्णकुटी बनाते हैं अपने, वहां से सीता जी का अपहरण होता है, वो वहां जाके होता है। और दंडकारण्य के इस तरफ चित्रकूट है, चित्रकूट में आखिरी पड़ाव उनका था जो दंडकारण्य में कदम रखने से, पाव रखने से पहले था। अब इसके पीछे ये भी कहानी है कि दंडकारण्य में वो गए ही क्यों पहली बार, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मतलब करीब करीब वनवास में से 2 साल अगर छोड़ दिए जाए तो 11 साल 11 महीने 11 दिन वो तो चित्रकूट में ही रहे थे, करीब करीब 12 साल हो गए, तो केवल 2 साल के लिए वो चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटने की जगह दंडकारण्य में गए ही क्यों? तो दंडकारण्य में इसलिए गए कि दंडकारण्य के कोने पर जब वो अत्रि मुनि के आश्रम में गए थे तो वहां पे एक सिद्ध पहाड़ करके एक जगह है जहां पे उन्होंने देखा कि वहां की मिट्टी लाल रंग की है और वो पहाड़ बना हुआ पूरा था। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तब वहां के पंडितों ने उनको बताया कि ये जो पहाड़ है पहाड़ नहीं है, ये दरअसल में राक्षसों ने, दंडकारण्य के राक्षसों ने जिन जिन ब्राह्मणों को और साधु मुनियों को मारा है उनकी हड्डियों का यहाँ फेंका गया है, उन हड्डियों से बना हुआ ये पहाड़ है और उनका जो रक्त है उसके कारण पहाड़ की मिट्टी अब तक लाल है। तो वहां पूर्ण आवेश में आकर प्रभु रामचंद्र जी ने पहली बार ये शपथ ली थी कि मैं दंडकारण्य में जाकर इन सबका नाश करूंगा। तो उस उनका नाश करने के लिए वो उस वन में घुसे थे ऋषि के आशीर्वाद से, एक बात। और दूसरी बात इसके पीछे कहानी है कि दंडक जो उनका उनका पूर्वज था वो दंडक राजा था, दंडक राजा के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे और उनका आश्रम था उस वन में, और वो एक बार कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के संग तीर्थ यात्रा पर, तो उनकी जवान बेटी वहां थी, तरुण बेटी वहां थी, और बेटी ने कहा कि मैं अकेली रह जाऊंगी यहाँ पे, आप चले जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। तब बृहस्पति जी ने ये कहा था कि मैं तो दंडक राजा का गुरु हूँ और ये दंडक राजा का राज्य है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस राजा का गुरु हूँ तो इस राज्य में तो तुझे कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, बाकी तू जब भी मुझे आवाज देगी मुझे वो आवाज आ जाएगी और मैं यहाँ आ जाऊंगा। उस समय दंडक राजा स्वयं जंगल में शिकार करता करता खो गया, भटक गया और इनके आश्रम में आ गया। उस कन्या को देख के मोहित हो गया और मोहित होकर उसने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये जब पता चला ऋषि बृहस्पति जी को, बृहस्पति जी ने दंडक राजा को श्राप दिया कि ये जो तेरा साम्राज्य है सारा राख हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं उगेगा और यहाँ पे केवल भूत पिशाच यही सिर्फ रहेंगे, और इसे दंडक के नाम से दंडक अरण्य, दंडक का जंगल, दंडक और अरण्य का दंडकारण्य, ये दंडकारण्य कहा जाएगा। तो जब उसने माफी मांगी या जब भी उसका श्राप देने की बारी आई, तब उन्होंने ये कहा कि अच्छा मैं इस श्राप को तो नहीं बदलूंगा, लेकिन तेरा एक वंशज आगे श्री राम आएगा, वो जब जंगल में आएगा, जब वो चलेगा, वो विष्णु का अवतार होगा, अंश अवतार होगा, जब वो इस जंगल में से चलेगा तो जहां जहां उसके कदम पड़ेंगे वहां वहां हरियाली हो जाएगी।
ओके,
तो जब वो इस जंगल में घुसे चित्रकूट के बाद, तो उन्होंने राक्षसों का संहार भी किया, रास्ते में ऋषि मुनियों के जितने आश्रम थे उन सब आश्रमों में उन्होंने वास भी किया, उनके साथ समय भी बिताया, और चलते चलते वो इस तरह से नासिक।
ओके, गॉट इट।
ये कहानी है दंडकारण्य की। लेकिन दंडकारण्य की जो पूरी दंडकारण्य की पहले की कहानी और दंडकारण्य के बाद की कहानी, वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसी रामायण हो, ये दोनों तरफ की कहानी है। बीच में दंडकारण्य के जो का जो परिसर है उसके अंदर की कहानियां शायद बहुत थोड़े से श्लोकों में लिखी है, 40-50 श्लोकों में ही लिखी गई है। वो गए इस ऋषि से मिले, गए इस राक्षस का संहार किया, इतना ही है, कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इसलिए पुस्तक में जो है हम जहाँ नासिक और नासिक के बाद चित्रकूट के बाद जब हम वो दंडकारण्य में कदम रखते हैं वहां की कहानियां है, उनके कदम रखते ही विराध नाम का जो एक गंधर्व था, शापित गंधर्व, उसने सीता जी का अपहरण किया था, उसकी कहानी है, उसके बाद सीधी नासिक की कहानी आ जाती है।
राइट,
नासिक की।
तो सर आपने भी जैसे मेंशन
किया है और वहां से कहानी आगे
बढ़ती है। तो सर जैसे आपने अभी भी मेंशन किया अबाउट द श्लोकास एंड कैसे 30-40 श्लोकास में इनकी मतलब वो छोटी छोटी कहानियां है, और हम बिफोर द रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि मैं आपसे पूछ रहा था एक फैक्ट के बारे में कि हर 1000 श्लोक के बाद में जो पहला वर्ड होता है उससे गायत्री मंत्र बनता है, एंड आपने कहा कि इतनी सारी रामायण है तो तुम कैसे पता लगाओगे कौन सा मतलब कौन सा वर्जन सबसे ट्रूएस्ट फॉर्म है। तो पहली चीज तो ये कि कितने वर्जन है रामायण के,
3300 कुछ,
3300
अगर मौखिक और लिखित सारे मान के जाएंगे। रामानुजम जी का एक आर्टिकल है बहुत जो इसके बारे में अधिकतर जिसकी जिसके बारे में उल्लेख किया जाता है, जिसमें वो 300 से ऊपर रामायण बताते हैं लिखे हुए। लेकिन एकनाथ जी के जो भावार्थ रामायण है उसमें उन्होंने कहा है कि 3232 या कुछ ऐसे रामायण कुल है। ये जरूरी नहीं कि आवश्यक नहीं है कि आज की तारीख में वो सारे के सारे होंगे ही, लेकिन जिन 300 रामायणों का उन्होंने उल्लेख किया वो तो सारे के सारे अभी भी प्रिंट पे आपको मिल जाएंगे। हर एक में मूल कहानी वही है, मूल जो हमें सीख लेनी है उससे वो वही है, लेकिन हर एक रामायण जिस जिस भौगोलिक परिवेश में लिखी गई, केरल में लिखी गई, मध्य प्रदेश में लिखी गई, तमिलनाडु में लिखी गई, बंगाल में लिखी गई, तो वहां के लोगों ने यह प्रयत्न किया कि इस रामायण को अपनी धरती से कैसे जोड़े, क्योंकि अगर अपनी धरती से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वहां के लोगों में प्रभु राम के प्रति आस्था नहीं पैदा होगी। तो इसीलिए हर किसी ने उसमें से मूल कहानी को और मूल कहानी का जो फ्लो है उसको वैसा ही रखा, उसकी सीख को वैसा ही रखा, उसके पात्रों को वैसा ही रखा, लेकिन कुछ कुछ जो उसके अंदर इवेंट्स इंसिडेंट्स हुए थे उनको घुमा के अपनी तरफ ले लिया। इसलिए हर कहानी को अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह घटती है। जैसे जटायु वध की जो बात है वो नासिक में ताकेड़ जो जगह है वहां पर घटता है, वो लेपाक्षी करके बेंगलोर में लोगों को कहना है वहां पर घटता है, तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसमें एक जटायु कुंड है लोग कहते हैं यहाँ पर है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि केरल में जो एक जटायु का स्थान बना हुआ है वहां पर वो हुआ है। तो हर एक जना चार जगह जाता है। अब ये कैसे फैलती है बात, मतलब दंत कथाओं में कैसे बात फैलती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो केरल का जो जटायु पार्क है, वहां पे कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पक्षी की कोई मूर्ति है, मतलब जटायु की मूर्ति बनी हुई है। इस कारण जब भी लोगों से बात करेंगे तो अधिकतर कहते हैं अरे ये तो केरल में है। अगर आप सिर्फ उस जटायु पार्क की वेबसाइट पे जाएंगे आज की तारीख में और उसको अगर आप गूगल करके देखेंगे तो उसमें जिन जो वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया है वो खुद कहते हैं कि यहाँ जटायु पार्क को मैंने 1900 इतने में बनाया। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही जटायु का का युद्ध होके वही उनकी मृत्यु हुई थी इसीलिए यहाँ बनाया गया, तो ये लोग उसकी दंत कथाएं जोड़ देते हैं। तो उस दंत कथाओं के जोड़ने में कोई सच झूठ की बात नहीं है, उस दंत कथाओं के जोड़ने में उनकी रामायण के प्रति आत्मीयता दिखती है। वो मानते हैं रामायण मेरा है, और क्योंकि वो उसे मेरा मानते हैं इसलिए उसका कोई अंश मेरे सामने नहीं घटा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कहा जाता है। जैसे ओडिशा के लोग हैं, ओडिशा में कई जगह ऐसे हैं जहां पे सीता रसोई है। अब अगर सीता जी चित्रकूट से दंडकारण्य से होते हुए नासिक पहुंच के अपहरण के बाद उनको ढूंढते हुए हम्पी और हम्पी से रामेश्वरम गए, तो उसमें ओडिशा तो कहीं आता ही रूट में नहीं आता, लेकिन वहां के लोग कहते हैं यहाँ सीता रसोई है, सीता जी ने यहाँ पे रसोई बनाई थी, वो इधर से गुजरे थे। अब वो अगर उनको चित्रकूट से नासिक जाना होगा तो ऐसे जाके वो उड़ीसा जाके ऐसे चलते हुए क्यों जाए, किसी दंत कथा में किसी वाल्मीकि में या कहीं भी उसका कहीं उल्लेख नहीं है उन स्थानों का, लेकिन वो जगहें हैं। तो ये तो एक आत्मीयता, मन की श्रद्धा और इस बात का सबूत है जो लोग कहते हैं कि रामायण घटी थी क्या, ये शायद इस बात का सबूत है कि अगर रामायण नहीं घटी थी और ये संपूर्णपणे एक मनगढ़ंत कहानी है जो किसी ने बैठकर बनाई है या एक धार्मिक दंतकथा है, तो फिर भारत के इतने हिस्सों में इतनी प्रभावी रूप से लोगों की उसमें श्रद्धा क्यों है, और आज नहीं है 2000 साल से क्यों है? वो श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा मानसिक रूप में नहीं है, अगर आप ऑलमोस्ट पांचवी सदी से देखते हैं तो उसके सबूत भी आपके पास है।
बिल्कुल,
शिला लेख है, उसमें पत्थर के ऊपर लिखे हुए चीज, छोटे छोटे पत्थर के सील्स हैं, मेटालिक सील्स हैं, मंदिरों में जो अलग अलग जगहों पे मंदिर बने हैं उनमें राम सीता की कहानियों के शिल्प बने हुए हैं। तो ये क्यों बनते, ऐसा तो नहीं था कि इंटरनेट था कि आज आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला और कल सारा शाम तक पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गया, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अल्टीमेटली इस कहानी में कोई तथ्य था, इसी कारण ये कहानी इतने साल तक इसी फॉर्म में पूरे भारतवर्ष में सुनी और सुनाई जाती।
राइट,
तो इसमें थोड़े थोड़े अपभ्रंश थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन वो अपभ्रंश भी खराब शब्द है, अच्छा शब्द नहीं है वो। उसमें हर एक जना अपनी आस्था के हिसाब से अपने को उस कहानी से जोड़ने के लिए कुछ स्थानों को अपनी कहानी में ले लेता है।
राइट,
कोई बुराई नहीं है।
राइट,
तो उसमें सच झूठ होता ही नहीं है। अगर मेरी आस्था है कि मैं अगर मयूर विहार में रहता हूँ दिल्ली में, और मैं समझता हूँ आस्था मेरी है कि मेरे घर के सामने के पार्क में ही प्रभु रामचंद्र जी ने एक बार वास किया था, तो मेरे लिए वो सच्चाई है ना। उस सच्चाई को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना या उसका कोई एम्पिरिकल सबूत मांगना, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं।
बिल्कुल, ऐसे तो सर मतलब नेपाल ने भी
नेपाल ने भी कहा ना, तो हम
श्रीराम हमारे
उदाहरण देता हूँ जी कि आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछता हूँ जयेश, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
बिहार
में, नेपाल में हुआ था। तो अब जो स्थान है वो आप इमीडिएटली सारे के सारे एक ही जवाब देते हैं कि फला जगह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन वो आप क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां अशोक, सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जो ये कहता है।
हाँ, ओके।
अब उनके जन्म का या उनके वहां पर पैदा हुए होने का तो कोई ऐसा सबूत है नहीं, वो तो ईसा से पूर्व 500 साल की बात है। लेकिन सम्राट अशोक का शिलालेख वहां है, क्योंकि सम्राट अशोक जब वहां गए थे तो जब उनको बताया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था, उन्होंने एक शिलालेख वहां बनवा दिया, वो आपका सबूत हो गया। तो आखिर इतिहास में आप कहीं ना कहीं तो एक जगह जाते हैं जहां रुक जाते हैं, वो कहते हैं इसके पीछे ये जो कहानी थी ये आज की तारीख में अगर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये सच्ची है।
करेक्ट,
ये कहानी जुड़ी हुई है इस बात से कि क्या रामायण घटी थी, तो इसलिए कहानी बतानी मुझे आपको जरूरी लगती है। और इंटरेस्टिंग कहानी भी बहुत है कि एक दूनागिरी नाम से गांव है ओली के पास, ओली जो जहां स्कीइंग रिसोर्ट है, ओली के पास, वहां पर कहते हैं कि संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी गए थे, और वहां से वो, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी मिली नहीं, रावण ने ऑलरेडी अपने राक्षसों को भेजा था, उनको ये पहचान बताई गई थी कि वहां पर जो चमकेगी वो संजीवनी बूटी है, तो चमकेगी अलग से। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रावण ने अपने राक्षसों को भेजा था जो अलग अलग जगह पे वहां बैठ गए थे पहाड़ पर, वो चमक रहे थे, उनको पहचानने में नहीं आए। तो दूनागिरी गांव में वो चले गए और दूनागिरी गांव में पूछने का प्रयत्न कर रहे थे कि यहाँ संजीवनी बूटी कौन सी है। तो पूरा गांव सो रहा था, एक बुढ़िया केवल जाग रही थी बाहर, तो उन्होंने उसको प्रणाम करके कहा माता मैं यहाँ आया हूँ और मुझे संजीवनी बूटी चाहिए, तो कहाँ पे है? तो उसने कहा वो रही सामने, उसने वो दिखा दी कि फला जगह है। तो हनुमान जी गए, वो वहां पहचान नहीं पाए, वो पूरा पर्वत लेके वहां से चले, पर्वत का एक टुकड़ा तोड़ा उन्होंने। हम नॉर्मली कहानियों में देखते हैं हनुमान जी का ऐसे हाथ होता है, पर्वत नहीं, उस पर्वत का एक टुकड़ा है, जब आप औली में खड़े होकर लोनागिरी गांव को देखते हैं तो टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है अलग से, पूरा पहाड़ ऐसे जा रहा है और बीच में वो ऐसे 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 करके टुकड़ा टूटा हुआ है, वो आपको दिखाई देता है वहां पे। अच्छा, उसकी साइड स्टोरी ये है कि उस गांव में जब वो वहां के लोग उठे, उन्होंने कहा अरे हमारी संजीवनी बूटी कहाँ चली गई। तो बुढ़िया ने बोला एक तो रात को एक बंदर ले गया। तो तब से उस बुढ़िया को तो गांव से निकाल दिया और तब से उस गांव में हनुमान जी की पूजा आज तक नहीं होती। अगर आप वीडियोस निकालेंगे यूट्यूब में दूनागिरी अगर आप गूगल करेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें लोग ये कहेंगे कि हम हनुमान जी की केवल एक छोटी सी प्रतिमा या छोटा सा फोटो अपने पास रख के उस गांव में गए थे, गांव वालों ने हमें मार मार के भगा दिया कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, अगर आप हनुमान जी को गांव में लाएंगे तो आपको नहीं आने देंगे, वो आके हमारे संजीवनी बूटी चुरा के लेके गए।
ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।
वहां जो रामलीला होती है वो सीता के अपहरण पर समाप्त हो जाती है। रामलीला पूरी होती है सीता के अपहरण पर समाप्त होती है, इसलिए समाप्त होती है कि इसके बाद हनुमान जी आ जाएंगे पात्र बनकर, तो उनको तो नहीं आने देना गांव में, तो इसलिए वो कहानी वही खत्म हो जाती है। अच्छा, इसकी सबूत वाली बात है कि श्रीलंका में गाले के पास में एक छोटा सा हिल है, वो हमें गाइड हमें लेके गया था, एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आप जाते हैं, उस पहाड़ी पर आप देखेंगे कि वहां की जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं, जो अधिकतर औषधि पेड़ पौधे हैं, वो बराबर उन्हीं पेड़ पौधों की तरह है जैसे औली में दूनागिरी पे पाए जाते हैं।
वाओ।
और वो सिर्फ उस पूरे श्रीलंका में उसी जगह पर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। और उसका अगर अंदाजन एक आकार आप पीछे जाकर देखेंगे तो पूरा आकार भी आपको करीब करीब वैसा नजर आता है जैसा वो पहाड़ जो वहां से कटा था वैसा है। अब बताइए, अगर आप कोइंसिडेंस ही कह के चलेंगे हर चीज, तो हर चीज कोइंसिडेंस है, और अगर आप मानेंगे विश्वास करेंगे तो ये भी तो एक बहुत बड़ा सबूत है कि वरना उस जगह में ऐसे पेड़ पौधे क्यों उगते हैं जो हिमालयन है, जो श्रीलंका के वातावरण से कोई उनका संबंध नहीं है, और वही पेड़ पौधे वहां उगते हैं। और आज भी श्रीलंका के जो वैद्य वगैरह है पुराने, वो औषधि वो लेने के लिए वहां आते हैं। अच्छा, दूसरे उस पर जो पत्थर है, उन पत्थरों को अगर आप मारोगे तो पत्थरों में से पर्टिकुलर आवाज आती है जो और आसपास के किसी रॉक्स में नहीं आती, और वो दूनागिरी जाकर अगर आप देखेंगे तो वो जो पत्थर वहां पड़े होंगे उनको मारोगे तो वैसी आवाज आती है। तो ये चीज मैंने खुद देखा है और खुद इसको मतलब महसूस किया है। तो ऐसी कई कहानियां इनसे जुड़ी हुई है जो आपको करने के बाद सच लगने लगता है कि हाँ कुछ तो हुआ। देखिए,
हाँ, मतलब
अभिव्यक्ति में अतिशयोक्ति हो सकती है, एक्सप्रेशन कैन चेंज, द मेथड ऑफ चेंजिंग इन से। अब जब एक कहानी कोई मुझे बताता है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें फर्क आ जाता है। आप किसी को बताएंगे उसमें और फर्क आएगा। तो ये फर्क तो पीढ़िया दर पीढ़ी कहानी चली, क्योंकि मौखिक परंपरा थी, तो मौखिक परंपरा में जब कहानी चलती रही तो वो बदलती रही। तो इसलिए अभिव्यक्ति में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन कहानी का जो मूल भाव है उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। वो कहानी खड़ी थी और वो यही इसी देश में इन्हीं जगहों पर घटी। ये मेरा मानना है, और ये मेरा मानना इस पुस्तक को लिखने के बाद हुआ है। शायद पहले मैं इतनी अथॉरिटी से नहीं कह सकता था, मैं भी बाकी लोगों की तरह सवाल ही पूछता कि हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, भगवान है, छोड़ो क्यों सोचना। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि एक महान आत्मा को इस नाम की थी।
करेक्ट। तो सर, मतलब मैंने ये भी सुना है कि फुटस्टेप्स में मिलते हैं। आपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि लंका में भी फुटस्टेप्स है, इंडिया में भी फुटस्टेप्स है, तो ऐसे और भी कुछ प्रूफ्स है जो मिलते हैं?
देखिए, फुटस्टेप तो पैर का आकार है, आप ये नहीं कह सकते प्रोग्राम की, वो तो आस्था है कि प्रोग्राम के। लेकिन उस रूट पे मिले हैं, उसी तरह के मिले हैं, इसका मतलब है कि वो फुटस्टेप है वहां पे, प्रभु राम के फुटस्टेप है। वो तो पूरे रास्ते आपको कई जगह मिलते हैं, दो तीन चीजें, सीता रसोई आपको हर जगह मिलती है। ये नेचुरली सीता जी जब गई थी यहाँ से नासिक तक, तो हर जगह उन्होंने रसोई तो बनाई थी, एक दिन के लिए दो दिन के लिए रोके तो भी, तो आपको सीता रसोई मिलती है, सीता नहानी मिलती है, जहाँ उनका स्नान करने का स्थान था सेमी प्राइवेट सा, वो जगह मिलती है। और साथ में आपको प्रभु रामचंद्र के फुटस्टेप भी कई जगह मिलते हैं, कई मंदिरों में।
एंड एक जो सबसे बड़ा
पे जाएंगे तो चित्रकूट में जो परिक्रमा है, चित्रकूट के एरिया में जो कि 11 साल 11 महीने 11 दिन रहे थे, इसलिए उस एरिया में आपको ज्यादा ही मिलते हैं जगह जगह पर। परिक्रमा पे जो आप परिक्रमा करेंगे पर्वत की, वो उसमें तो आपको जगह जगह पर मिलेंगे, कई जगह।
सर, सबसे सबसे बड़ा प्रूफ तो जो इनफैक्ट नासा ने भी सैटेलाइट से वो इमेजेस बताए है कि एडम्स ब्रिज, जिसको आपने मुझे बताया कि एडम्स ब्रिज नहीं है, वो आदम्स ब्रिज है, तो उसकी भी सर कहानी क्या है, कैसे होता है, एंड आदम्स ब्रिज क्यों?
आदम क्योंकि वो 14वीं सदी में वहां का एक सूफी संत थे, आदम खान करके, वो उस पर से कहते हैं कि चलकर श्रीलंका से भारत आया करते थे, भारत से श्रीलंका वापस आते थे, ये दंत कथा है। तो इसीलिए उनके नाम के पीछे वो आदम, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, उस सूफी संत के नाम से लोगों से आदम ब्रिज अंग्रेजों के टाइम में कहने लगे, क्योंकि अंग्रेजों में आदम और एडम का स्पेलिंग एक ही होगा तो उनके लिए सहूलियत थी एडम कहना, इसलिए उन्होंने उसको एडम ब्रिज नाम दे दिया और वो नाम आगे चलता रहा। वो धनुषकोटी से शुरू होता है और श्रीलंका में समाप्त होता है वो। लेकिन अधिकतर अगर लोगों से पूछा जाए कि श्री राम सेतु कहां से कहां तक है तो लोग यही कहेंगे धनुषकोटी से लेकर और श्रीलंका तक है, श्रीलंका। लेकिन ऐसा है नहीं, रामेश्वरम का आखिरी छोर, और रामेश्वरम एक आइलैंड है। रामेश्वरम भारत की धरती से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में समुद्र है। तो अगर हम श्रीलंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाना पड़ा क्योंकि वानरों को तैरना नहीं आता, तो रामेश्वरम कैसे पहुंचे? तो रामेश्वरम भी नहीं पहुंचने चाहिए ना, तो वहां से धनुषकोटी से तो पुल शुरू हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो पुल को भी हम ढूंढते हुए निकले थे। तो वहां एक सेतु कराई करके जगह है, सेतु कराई, यहां से सेतु बना, सेतु कराई, तो उस स्थान से वो शुरू हुआ था। और सेतु कराई से वो अल्टीमेटली गया था रामेश्वरम तक। रामेश्वरम में वो मंदिर की स्थापना वगैरह हुई, वहां पे विभीषण से वो मिले, वहां पर उन्होंने तपस्या भी करी, सागर को भी हटने के लिए कहा, सब कुछ किया। उसके बाद वो जो है वो वहां पर उन्होंने धनुषकोटी से और श्रीलंका तक तलाई मनार तक पुल बनाया।
राइट,
वही अगर आप सेतु कराई जाते हैं तो सेतु कराई में अभी भी उस पुल के अवशेष वहां मिलते हैं। अभी जब हम गए थे तो हम उस पुल पर जा नहीं पाए उस जगह पर, क्योंकि वहां जस्ट उससे चार महीने पहले ही कुछ 28 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि वहां ये शिप से जाते हैं, आप बोट से जाते हैं, और जब आप बोट से जाते हैं तो चारों तरफ गहरा समुद्र है, बीच में सिर्फ एक जगह है जहां पे लो टाइड में वो आपको दिखने लगता है, आप उस पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप वहां खड़े हो तो आधे घंटे में आप निकल आए, क्योंकि पानी बढ़ जाता है। तो आजकल जैसे सेल्फी जनरेशन है, कुछ लोग वहां जमे रहे कि कुछ नहीं होता, पानी बढ़ेगा तब दिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा तो निकल जाएंगे। तो पानी एकदम बढ़ा और उसके साथ वो लोग चले गए, बह गए। जब वो बह गए तो कलेक्टर साहब ने वहां बैन लगा दिया था, जा नहीं सकते, लेकिन वो जगह दिखती है। कुछ जगह है वहां पे अब भी दिखती है।
सर मतलब वो फोटोज भी जब हम देखते हैं तो मुझे तो अब भी शौक लगता है कि ये आज से कितने सैकड़ों सालों पहले की बात है, मशीनरीज नहीं है एंड स्टिल वो ब्रिज क्लियरली दिख रहा है। एंड कुछ लोग ऑब्वियसली अभी भी इसे कहते हैं कि मैनमेड नहीं है, वो नेचुरल है।
हाँ, कोरल फॉर्मेशन बोलते हैं, कोरल फॉर्मेशन ऐसे वो कोरल फॉर्मेशन थी। अब देखिए आप अल्टीमेटली किसी चीज को आपको नकारना है तो आप 1000 तरीके ढूंढ सकते हैं, किसी चीज में आस्था रखनी है तो उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। तो आपको देखना है आप किस तरह से खड़े होकर इस चीज को देखना चाहते हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं अगर चाहूँ आपको, आप मेरे बारे में सोचे कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ तो आप अच्छे के कारण ढूंढ लेंगे, अगर आपको मेरे में बुरा ढूंढना है तो आप उसे ढूंढ लेंगे, और उसी को सिर्फ हाईलाइट करके कहेंगे मैं आपको बिल्कुल दिखित आदमी से बात कर रहा हूँ जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। या आप ये कह सकते हैं कि ये देखो इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो आपके ऊपर है ना, आप दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। तो उस दृष्टिकोण में तो आप हर चीज का सबूत तो नहीं दे सकते।
करेक्ट। तो सर अब हम जैसे एडम्स ब्रिज तक पहुंच गए तो इस कहानी को अब हम लंका से भी कनेक्ट करते हैं, रावण के बारे में बात करते हैं। एंड अच्छा ठीक है, तो रावण के बारे में बात करते हैं, उसके पहले ये एक पता नहीं, मैं आज रिसर्च कर रहा था, मुझे बहुत सारे अजीब अजीब फैक्ट्स पता चले। तो रावण के बारे में मैंने ये देखा और सुना कि जब ये ब्रिज बन रहा था तो उस टाइम पे श्री राम ने वॉर करने के पहले एक हवन कराया था, जिसके लिए उन्हें एक शिव जी का सबसे बड़ा भक्त चाहिए था, तो उन्होंने रावण को बुलाया था। ये बात सच है?
देख, सच झूठ कुछ नहीं है, सब कुछ सच है, जो भी बात सुनी है वो हर बात सच है, कोई भी बात इसमें झूठ नहीं है। लेकिन ऐसा कोई उल्लेख कम से कम वाल्मीकि रामायण में नहीं।
ओके,
ऐसा वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं है, गोस्वामी जी का इसमें भी कोई इस तरह का उल्लेख नहीं है। ये कई चीजें बाद में वाल्मीकि रामायण भी अगर आप देख के चलते हैं तो हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, अक्सर जब टॉक देता हूं तो ये पूछता हूं कि वाल्मीकि रामायण किसने लिखी, तो कहते हैं वाल्मीकि ने लिखी, तो गलत, क्योंकि वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण नहीं लिखी, वो उसमें बालकांड और उत्तरकांड ये बाद में जोड़े गए। तो अगर वो इसके ऊपर बहुत सारे अथॉरिटेटिव हमने मोनोग्राफ भी पढ़े हैं जिसके अंदर वो समझाते हैं कि कैसे लिखने की शैली अलग है, बालकांड और उत्तरकांड छोड़ के जो बाकी बीच में है उनमें भी लिखने की शैली अलग है, और वो समझो अप्रोक्सीमेटली ईसा के बाद 100 से 500 साल के बीच में, और 100 या 500 साल पहले, इस 1000 साल के दौरान उसमें बहुत चीजें जोड़ी गई हैं।
ओके,
तो कुछ लोगों के तो नाम भी उसमें है, सौती एक है, सौती के एक पुत्र थे, सौती केश्वर कुछ ऐसा नाम था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसके अंदर कुछ कुछ जोड़ा है, और हर एक ने अपने सामाजिक परिवेश के अंदर रहते हुए जिन चीजों को जोड़ना जरूरी समझा रामायण को अपने लिए जस्टिफाई करने के लिए, उन्होंने उस तरह से उसके अंदर चीजें जोड़ दी। तो पूरा यह लगता है कि उस समय शायद कहीं रावण की हत्या करने के बारे में कुछ आलोचना हुई होगी प्रभु रामचंद्र की, एक राजा था उसकी क्यों हत्या की गई, ऐसी कुछ आलोचना शायद हुई हो, मैं एक गेस कर रहा हूँ, इसीलिए उत्तरकांड में पूरा उत्तरकांड इसी तरह से लिखा गया कि ये दिखाने के लिए कि रावण शुरू से ही विलन था, अच्छा कभी था ही नहीं, उसको इस तरह दिखाने के लिए पूरा उत्तरकांड में पेंट किया है, जो कि एक्चुअली सच्चाई नहीं है उसके अंदर। पूरे मुख्य रामायण के इसमें ऐसा नहीं दिखाया है, सिर्फ एक अहंकारी पुरुष है इस तरह से उसका उल्लेख है,
राइट।
लेकिन उसमें तो ये दिखाया गया कि जैसे बचपन में जो भी करता था गलती करता था, अच्छा कभी
करेक्ट, हां
करेक्ट, तो ऐसा नहीं था, तो वीणा कैसे बजाता था, वीणों का इतना कैसे, वीणों का उसको कैसे ज्ञान था, इतना प्रकांड पंडित कैसे था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त क्यों था, उसने शंकर भगवान के इतने सारे मंदिर क्यों बनवाए। अब ये चीजें तो उस कैरेक्टर के साथ नहीं फिट होती ना।
राइट, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है रावण के बारे में भी बात करने का, लंका के बारे में बात करने का, तो वहां की कुछ कहानियां हैं जो आप बता सकते हैं?
श्रीलंका की कहानियां, श्रीलंका में देखिए सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। रावण तीनों लोकों के स्वामी थे। अब तीनों कौन से हुए, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों के स्वामी थे, देवताओं को उन्होंने बंदी बनाया हुआ था। तो वहां एक गायत्री वार टेम्पल है एला के पास में रहे, जहां पे कहते हैं कि इंद्रजीत ने साधना की थी पहली बार अपनी दिव्य शक्तियों को लेने के लिए, और कहते थे कि प्रभु रावण और इंद्रजीत, इनको जब अपनी शक्तियों में कुछ कमी होती महसूस आती थी तो वो वहां के मेडिटेट करते थे और उस शक्तिपीठ से उनको शक्ति प्राप्त होती, ऐसा एक है। तो एक तरह से देखा जाए तो वैचारिक रूप में आप समझिए रावण की उपासना करने वालों को गढ़ मान सकते हैं आप, शंकर भगवान का मंदिर है, गायत्री देवी का मंदिर है उसके अंदर। तो वहां पर जो उनके जो एक मुख्य व्यवस्थापक वहां थे, उन्होंने हमें ये बात बताई कि एक तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में भी रावण से संबंधित बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी हुई है। तो उन्होंने हमें समझाते समय समझाया कि तीनों लोकों का अर्थ पाताल, पृथ्वी और आकाश नहीं था, वो ऐसा था कि रावण का जो साम्राज्य था वो भारतवर्ष में भी था, जिसे हम भारतवर्ष समझते हैं। कैसे कि जनस्थान था जहां पर खर और दूषण के साथ युद्ध हुआ था प्रभु राम का, जहां शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद खर दूषण के पास वो गई थी, जो उनका बंधु था और उनका कजन था और उनका एक सेनापति था, उनके साथ लड़ाई हुई थी और उनके सारे सारे लोगों को प्रभु राम जी ने अकेले मारा। तो वो जनस्थान जो है वहां शूर्पणखा को इसलिए भेजा गया था कि वो जनस्थान रावण की जो का जो साम्राज्य था उसकी सीमा थी, तो वहां तक था।
ओके।
और साथ में रावण ने कुबेर को हिमालय पर्वत की तलहटी में हराया था, यानी वहां तक उसकी फौज की रीच थी, वहां तक वो जाते और वापस आते। तो जहां तक उनकी रीच थी वो तो था पृथ्वी लोक। श्रीलंका से नीचे का जो हिस्सा था वहां वो कोई जाते ही नहीं थे उस समय में, वो था पाताल लोक, और हिमालय पर्वत से ऊपर का जो हिस्सा था वो था स्वर्ग।
ओके।
तीनों लोक मतलब उस समय पृथ्वी लोक पर जो तीनों जगह है वहां के उस समय के व्यक्तियों को पता थी, वो उन्होंने उसको तीनों लोकों में बांट लिया।
राइट। ओके। तो हम जो सोचते हैं, राइट, हम जो इस तरह से सोचते हैं वो एक्चुअली कह सकते हैं कि लैंड के बेसिस पे था,
लैंड के बेसिस पे था। भारतवर्ष पूरा था, भारत से उत्तर की तरफ के भी एरिया थे, क्योंकि वहां कुबेर को हराया था उन्होंने, कुबेर को भगा दिया था पर्वत के अंदर, और उसके नीचे के एरिया तो थे ही थे, क्योंकि रावण राक्षसी रहते थे वहां सारे नीचे के। रावण तो ब्राह्मण थे ना। रावण तो ब्राह्मण थे, असुरों के राजा होने के बावजूद, क्योंकि उनके पिता जो थे वो ऋषि थे, वो राक्षसी से विवाह हुआ था इसीलिए वो राक्षस कहलाए गए, वरना तो जन्म से ब्राह्मण ही थे, इसीलिए ब्राह्मण की हत्या का पातक लगा, उस पातक को छुड़ाने के लिए प्रभु रामचंद्र ने कई जगह तप किया और इस तरह की कहानियां बाद में।
ओके।
तो वहां का जो विचार है रावण के बारे में, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि रावण एक बहुत प्रकांड पंडित था, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार ने उसको घेर लिया था, और उसके अहंकारी पने के कारण ही उसने इस काम को किया, अड़ा रहा और उसका अंत हुआ। तो उसको कहीं भी विलन नहीं मानते, उसको एक अहंकारी राजा मानते कि जो अपने अहंकार पे अंकुश नहीं लगा सका, और न अंकुश लगा जाने के कारण उसका सर्वनाश हो गया, ऐसा वो मानते हैं वहां के लोग, जो रावण को मानते हैं वो लोग, वो उसको मानते हैं इस तरह से। रावण के अहंकार का एक ये कहानी मैं बता सकता हूँ आपको कि ट्रिंकोमाली में एक मंदिर है जो शंकर भगवान का मंदिर है, डच फोर्ट के अंदर पहाड़ के ऊपर, जो रावण ने जिसकी निर्मिति की थी, और ये कहते हैं कि रावण की जो माँ थी कैकसी, उसकी तबीयत खराब थी और वो प्रभु शिव जी का दर्शन करना चाह रहे, तो रावण में इतना अहंकार था कि ये मंदिर मैंने बनाया है, शंकर भगवान का मैं भक्त हूँ, शंकर भगवान पे मेरा पूरा अधिकार है, और अगर मेरी माँ शंकर भगवान के मंदिर तक नहीं जा सकती तो मैं उस मंदिर को उठा के माँ तक लेकर आऊ, क्योंकि मातृभक्त था बहुत ज्यादा रावण। तो उसने अपनी तलवार निकाली और वो पहाड़ काटने की कोशिश की। जब उसके उसने काटने की शुरुआत की, वहां पर अभी भी एक रावणास कच्छ बोल के एक जगह है जहां पे वो पहाड़ दो में कटा हुआ है, और ऐसा लगता है उसके साइड में अगर आप देखेंगे ऐसा लगता है जैसे उसमें से किसी ने किसी हथियार से काटा हो, तो जैसे निशान आएंगे ना साइड पे,
हाँ
वैसे वो निशान उस पे है, उस पे अभी तक है
ओ
नीचे तक। और वो रावणास कट जो है इस पहाड़ में करीब 300 फुट गहरा है और पहाड़ को दो
ओके
तरफ में काटता है। लेकिन कहते हैं कि शंकर भगवान को जब ये इसका एहसास हुआ कि कोई मेरे पत्थर को काट रहा है, तो वो आए और उन्होंने रावण के अहंकारीपने से उन्हें बहुत क्रोध आया, और क्रोध आने से उन्होंने केवल अपना अंगूठा रावण की तलवार पर रख दिया, और अंगूठा रखने के कारण वो तलवार जो फिसलती हुई पूरी गई और जाके समुद्र में चली गई। और रावण को पता
ओ
चला कि भाई अपन ने गलती की है, अब मेरे को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनकी माता ने सुना कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान के मंदिर को उठाने की कोशिश की, उन्हें इतना दुख हुआ कि उनकी मृत्यु वही हो गई।
ओ
और वहां से जब रावण वापस गया तो वो अपनी माता के दर्शन भी नहीं कर पाया।
ओके
ये
हाँ
इसकी कहानी है। तो देखिए अहंकार कितना है कि शंकर भगवान भी मेरे हैं, मैं जहां चाहे इनको उठा के लेके जा सकता, समर्पण
राइट
नहीं है। तो ये अहंकार का जो भाव, स्थायी भाव है ना उसके स्वभाव में, ये अहंकार का स्थायी भाव केवल उसको लेकर, बाकी कुछ नहीं।
ओके एंड सर एक और कहानी है ना जहां पे अहंकार हमें रावण का देखने मिलता है, शिवजी का, शिव एक कोई पहाड़ है जहां पे कहते हैं कि शिव जी रहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
बताए आगे बताए।
तो रावण वहां जाता है एंड जो शिव जी के गेट कीपर होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम अभी नहीं मिल सकते शिव जी से क्योंकि वो मेडिटेट कर रहे हैं। एंड रावण फिर ये सोचता है कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझसे क्यों नहीं मिल सकते, एंड वो उस पहाड़ को उठा लेता है एंड उसके नीचे वो तांडव करता है, ऐसी भी एक कहानी है।
ये कहानी है, लेकिन ये कहानी कहीं ऐसे मुझे वाल्मीकि में या गोस्वामी तुलसीदास जी में या इवन आध्यात्मिक रामायण में कहीं इसका मुझे नहीं, इसके
राइट तो
बारे में।
ये भी फिर
लेकिन ये कहानी
एड ऑन
मैंने भी
है।
सुनी है, मैंने भी सुनी। हाँ एड ऑन है, कई
ओके
जगह एड ऑन से, कई जगह कहानी एड ऑन से, कई जगह
ओके
एड ऑन से। एक महत्वपूर्ण बात जयेश, कि रावण के 10 सरों की जो कहानी थी, दशानन जो है, वो दशानन था,
दशानन
10 सर थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिकली वो राक्षस था इसलिए उसके 10 सर थे, वो तो हम रामलीला में देखते हैं तो सबसे आसान कारण वो है। कुछ
हाँ
लोग उसको थोड़ा सा आध्यात्मिक या ज्यादा फिलोसॉफिकल लेवल पे ले जाते हैं, कहते हैं कि
फिलोसोफी
वो 10 व्यक्ति और जितना ज्ञानी था इसलिए उसके 10 सर कहे जाते थे। लेकिन श्रीलंका में जाने के बाद वो गायत्री वार टेम्पल में ही हमें बताया कि वो 10 सर नहीं थे एक्चुअली। वो रावण एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और उसने अपने पूरे राज्य को 10 जिलों में बांटा हुआ था, 10 प्रकोष्ठों में बांटा हुआ था, और
ओके
हर एक प्रकोष्ठ का अलग से एक क्राउन था। तो जब वो अपने दरबार में अपने अपने सिंहासन पर बैठता था तो एक क्राउन उसने पहना होता था, मुकुट, और पीछे एक ऐसे इस तरह की चीज कोई बनी हुई थी जिस पर वो 10 मुकुट रखे जाते थे,
समझ गया
साथ साथ एक के साथ एक, दिखाने के लिए कि
करेक्ट
ये जो यहाँ बैठा है वो इन सारे राज्यों का भी अधिपति है। तो इसलिए जब रावण अपने दरबार में बैठता तो ऐसा लगता था कि जैसे ये एक सर और ये एक मुकुट और इधर 10 मुकुट और है, तो 10 सर और।
राइट
इट वॉज
अच्छा तो
एक्चुअली अ
उस
ट्रिब्यूट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन कि रावण कितना
करेक्ट
अच्छा मतलब प्रशासनीय जो उसकी सक्षमता थी वो कितनी ज्यादा थी, वो दिखाने के लिए वो 10 सरों का उल्लेख होता है, ऐसा हमें वहां पे
राइट
कहानी में सुनने को मिला। वैसे कई नई
एंड
चीजें
सर
सुनने को
ये
आती हैं।
तो प्रूवन फैक्ट भी है ना, बिकॉज रावण लंका तो कितना, मतलब हम कहते हैं कि सोने की लंका जो हम कहते हैं, कि उससे पता चलता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था तभी वो था। एंड प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब रावण का वध होता है, मतलब श्री राम वो तीर छोड़ता है एंड रावण इज डाइंग, तो प्रभु राम लक्ष्मण से भी कहते हैं ना कि उसके पास जाके बैठो एंड उनसे सीखो सब कुछ।
ये भी कहानी है, ये भी कहानी है, उनसे सीखो। और वो बताते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं वो भी कहानी है
हाँ
जो हमने, ये तो सब जगह हम मतलब तो सर्वज्ञात है, क्योंकि ये रामानंद सागर में जो कहानी आ जाती है वो कहानी तो सब जगह फेमस हो जाती है। क्योंकि अब देखा जाए
राइट
तो अगर अभी मैं अपने पोतों से पूछूं कि या 10-12 साल 14 साल के भी किसी को पूछूं रामायण किसने लिखी, तो आधे लोग तो रामानंद सागर ही बोलते हैं,
राइट
क्योंकि उनको
करेक्ट
वही वर्जन मालूम है, दूसरा वर्जन मालूम है
हाँ
नहीं। जबकि वो वर्जन ऐसा है जिसके अंदर ठीक है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है प्रभु श्री राम की कथा को एक एक पूरी जनरेशन तक पहुंचाने का, लेकिन उन्होंने उनके माध्यम की ये आवश्यकता थी कि ऐसी चीजें उसमें डाली जाए जो दृश्य हो, देखने लायक हो, विच हैज विजुअल अपील।
इंटरेस्टिंग हो
तो इसीलिए उन्होंने सारी वही
करेक्ट
कहानियां चुनी है, जैसे रावण
करेक्ट
का नासिक में लक्ष्मण रेखा पार करना, पार आगे
हाँ
कदम रखते अंदर से आग निकलना। अब ये चीजें जरूर उन्होंने वो वही कहानी उठाई जो मुख्य में कहीं रामलीलाओं में राम रावण है ही नहीं, ना तो वाल्मीकि में है, ना तुलसीदास में है, ना तो आध्यात्मिक रामायण में, कहीं ये कहानी नहीं है। ये
करेक्ट
एक तेलुगु रामायण से आती है और तेलुगु रामायण से बाद में बांग्ला में गई कृतिभास के रामायण में, वहां से नॉर्थ इंडिया में सब तरह कहानी फैल गई, लेकिन ओरिजिनल वाल्मीकि में गोस्वामी जी में कहीं भी ये कहानी नहीं है, लेकिन उन्होंने वही कहानी उठाई क्योंकि उसमें विजुअल अपील ज्यादा था, विजुअल अपील ज्यादा था.
राइट. तो सर इज दिस एथिकल, मतलब क्या ये एथिकल है? एंड रामानंद सागर ने अच्छा काम किया या नहीं किया, आपके क्या थॉट्स हैं उस पे? फिर
बहुत अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा किया क्योंकि वो कहानी का देखिए अगर ऐसा है हम एथिकल अनएथिकल बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरित वो क्यों एथिकल है, उन्होंने भी तो वाल्मीकि रामायण से अलग हटके कुछ लिखा है ना, तो क्यों वो अनएथिकल नहीं है? अगर कृतिभास ओझा ने कुछ लिखा तो क्यों अनएथिकल नहीं है? भावार्थ रामायण क्यों एथिकल नहीं है या तेलुगु रामायण क्यों एथिकल नहीं? सब कुछ एथिकल है क्योंकि हर एक चीज हर एक की अपनी एक कहानी है और उसको अपने तरीके से उसको कहने की कोशिश कर रहा है. तो अगर रामानंद सागर जी ने कुछ अलग अलग जगहों से कहानियां उठाकर उसको एक नरेटिव बनाकर आपके सामने दिया तो कहानी के मूल सार को तो वैसा ही रखा ना.
हाँ
अनएथिकल या भावनाओं से खिलवाड़ ये तब होता जब ये दिखाते कि रावण का वध हुआ ही नहीं.
हाँ
राइट. या कुछ ऐसी बात, या सीता का अपहरण ही नहीं हुआ, वो तो अपने आप चल के गई थी. कुछ इस तरह की अगर ऐसी गलत बात, झूठ बात, दाम्भिक बात अगर कोई कहते तो वो गलत है. ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने पूरी तरह से कहानी के मर्यादा के अंदर रहते हुए कहानी बनाई है. और जो कहानियां उठाई है उसमें एक भी कहानी ऐसी नहीं है कि जो उन्होंने गढ़ी हो, कि उन्होंने बैठ के कहा कि यहाँ ऐसी कहानी डाल देते हैं, नहीं. और गढ़ते तो भी उनका वो अधिकार था क्योंकि वो एक नई रामायण लिख रहे हैं, एक नए माध्यम से उस रामायण को की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो वो भी उनका अधिकार था. लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बाकी जगह से रामायण से उठा उठा के वो कहानियां ले ली और उसका एक ऐसा नरेटिव बना दिया कि जिस नरेटिव के अंदर सच्चाई है. अगर देखा जाए तो फिर मेरी फुटस्टेप्स ऑफ रामा भी अनएथिकल है क्योंकि इसमें भी तो कई रामायणों से कहानी ली गई है.
करेक्ट.
हम जब उत्तर भारत में है तो वाल्मीकि और गोस्वामी जी से लेते हैं, जब हम दक्षिण भारत में गए तो हमने कंभ से कहानियां ली है, श्रीलंका में गए तो वहां उल्लेख ही नहीं है किसी का, हमने सीधी वहां के लोगों से सुन के कहानियां ली है. ये इस तरह से तो ये स्वतंत्र तो मिलेगा हर किसी को
जिससे
वो अपनी कहानी अपने तरीके से कहे जब तक वो उसके मूल स्वरूप को बदलने का प्रयत्न ना करे, वो अनएथिकल शायद मैं मानूंगा, अदरवाइज सब कुछ एथिकल है.
राइट. एंड सर हम रावण के ऊपर बात कर रहे थे तो दो तीन चीजें और, जैसे अब एक चीज तो ये पहली चीज मुझे आपको पूछनी थी कि अब इंडिया में पता नहीं ये मिसकंसेप्शन है या ये सच में होता है, क्या श्रीलंका में लोग रावण की पूजा करते हैं? एंड सेकेंड चीज कि श्रीलंका में मैंने कहीं तो पढ़ा है या सुना था कि अब भी लोग कहते हैं कि वो एक गुफा है जिसके अंदर रावण अभी भी रहता है, तो क्या चीज है ये?
हम उस गुफा में गए थे. एक तो पूजा होती है क्या? हाँ कई जगह होती है, पर्टिकुलरली तमिल एरियाज जो है, बिल्कुल नॉर्थ श्रीलंका के जो एरियाज है उसमें दो या तीन जगह रावण के मंदिर हैं, लेकिन वो पुरातन नहीं है, वो अभी के सालों में बने हुए हैं. जब से विचारधारा आने लगी कि रावण एक दक्षिणात्य था जिस पर एक उत्तर भारत के लोगों ने अत्याचार करके उसको उसके साम्राज्य को समाप्त किया, ये विचारधारा जब से पनपने लगी तब से वो रावण के उपासना के बारे में बातें होने लगी. और वो उस समय के बने हुए मंदिर है, कुछ मंदिर शायद हो सकता है 500-700-800 साल पुराने भी हो, लेकिन दो या तीन मंदिर ही सिर्फ है जो जाफना वाले इलाके में है, बाकी पूरे इसमें सिर्फ शिव के मंदिर है जिनकी स्थापना रावण ने की है. और ऐसे शिव के मंदिर भारत में भी है, जो उज्जैन का महाकाल का मंदिर है वो भी शिव का ही बनाया हुआ, उन्होंने शिव का मंदिर वो रावण ने ही बनाया है वहां पर. तो ऐसे कई मंदिर भारतवर्ष में भी है जिनके जिनकी स्थापना पहले रावण ने ही की थी आकर यहाँ पर, तो इसलिए वो रावण की उपासना नहीं, रावण की उपासना तो नोएडा में होती है.
ओके.
मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि दिल्ली के पास नोएडा शहर है जिसमें सेक्टर 56 में जो है वहां पर एक रावण का मंदिर है, वो भी खैर रावण का मंदिर अभी 30-40 साल से बना हुआ है, बिसरक करके गांव है जो गांव रावण का जन्म स्थान माना जाता है, वहां पे सुबह शाम आरती होती है, रावण के नाम का प्रसाद भी आप ले सकते हैं, भंडारा खा सकते हैं जाकर, ये अभी भी हुआ है. लेकिन ये अपभ्रंश है जो अभी अभी किए गए, श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं. जो पूछते हैं देखिये, श्रीलंका के अधिकांश लोग तो बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट है उनका तो रामलीला से राम की कहानी से कोई संबंध नहीं, और जितने हिंदू हैं वो सारे के सारे प्रभु राम को या सीता को ही पूछते हैं.
बिल्कुल.
कुछ है, कुछ लोग हैं वहां पे, जैसी एक एक स्त्री है जिसे शूर्पणखा का अवतार मानते हैं अभी. हाँ अभी भी मानते हैं वो लोग और उनकी पूजा करते हैं, जो पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज है उसमें वो शूर्पणखा का अवतार मानते हैं और माता जी की पूजा की जाती है. और वो उस पर एक यूट्यूब वीडियो भी मैंने देखा था, उनके स्थान पर हम गए थे लेकिन वहां उस दिन हमारे मैं नहीं कहूंगा दर्शन नहीं हुए, मैं कहूंगा कि शायद हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे, दर्शन मैं नहीं प्रयोग करना चाहूंगा उनके लिए क्योंकि लोगों की उनके मन में श्रद्धा होगी, मैं नहीं इन चीजों को मानता हूँ. तो वो कहते हैं कि वो शूर्पणखा का अवतार है, और ये कहा गया कि जैसे वो कोई वीडियो देखा मैंने इसका, जिसमें वो कहते हैं कि जब वो बाहर निकले तो बारिश नहीं थी और माता जी ने पीछे से आके ऐसे हाथ दिया तो एकदम बारिश होने लगी, इस तरह की बातें लोग करते हैं। बट ये तो सारी दाम्भिकता की बातें, इसमें कोई सत्य नहीं।
राइट,
पर ये एक छोटा सा हिस्सा है जो लोग करते हैं, ऐसा कोई मेन स्ट्रीम में देयर इज नो वर्शिप ऑफ रावण, नहीं ऐसा कहीं नहीं है। आदर है उसके लिए, लेकिन आदर होना और उसको भगवान के रूप में पूजना, इसमें बहुत बड़ा
फर्क है। बिल्कुल। एंड जो गुफा की आपने बात की, तो आप उसके अंदर गए थे, आपको मतलब है रावण वहां पे? आई एम श्योर कि मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, या तो उसने मुझे मिलता तो मुझे रख लिया होता या मेरे साथ आ गया होता, दोनों ही बातें नहीं हुई, तो इसलिए वो नहीं मिला मुझे। लेकिन वो स्त्रीपुरम करके एक जगह है वेलीमाड़ा के पास में, वो स्त्रीपुरम में पहाड़ के अंदर एक गुफा है, जिस गुफा में कहते हैं कि जब हनुमान जी ने दर्शन किए सीता जी के, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, उसके बाद जब हनुमान जी वापस आ गए तो रावण के दिमाग में यह आया कि भाई अगर यही रखूंगा तो फिर वो बंदर ढूंढ लेगा, इसलिए उन्होंने उनको उठाकर एक गुफा में शिफ्ट कर दिया था। गुफा स्त्रीपुरम में है वेलीमाड़ा के आगे। गुफा की खासियत यह है कि उसका जो मुंह है वो कोई मुश्किल से 4 फुट बाय 4 फुट का होगा, और वहां से एक रस्सी लटकी है नीचे, उस रस्सी से आप ऐसे जाके और 14 फुट नीचे जाते हैं, जब नीचे 14 फुट जाते हैं तो जमीन पर रहते हैं, तो वहाँ एक ह्यूज गुफा है और आगे वो गुफा चलती है 3-3.5 किलोमीटर तक, और 3.5 किलोमीटर के आखिर में वहां पे एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका पानी इतना शुद्ध है कि आप उसमें एक सिक्का डाल देंगे तो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। वहां पे सूर्य प्रकाश भी आता है और हवा भी आती है। तो कहते हैं कि वहां पर रखा गया था सीता जी को रखा गया था। तो जब हम उसमें गए थे, अगर हम आखिर तक जाने का धाड़स नहीं बना पाए, और कुछ ऐसा भी कि उस गुफा को ढूंढते ढूंढते हमें शाम हो गई थी, तो हमें था कि अंधकार के बाद हम गुफा में फंसना नहीं चाहते, जाते थे बाहर।
इसके बारे में आपने लिखा भी है शायद बुक में।
हम 1.5 किलोमीटर आगे गए थे, 1.5 किलोमीटर जाके फिर हम लौट आए थे वहां से, क्योंकि वहां इंसेक्ट बाइट्स होने लगे रात के, चमगादड़ निकलने लगे रात को, और बाहर ये था कि हमारी पत्नियां बाहर वेट कर रही थी कि भाई वापस जाने के लिए, तो अंधेरे में हमें वो पहाड़ भी उतर के आना था, तो वी डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क, इसलिए वहां से वापस आ गए रात को। आपको सांप बिच्छू भी हो सकता है वहां पे, लेकिन जो लोग उस समय लौट रहे थे, जो पहले घुसे थे, उनके माध्यम से वो लेख हमने उनसे सुना सब क्या था वहां पे, तो वो लेख। अब उस जगह को ढूंढने में हमको शाम इसलिए हुई कि हमें जब बताया गया था कि वेलीमाड़ा के पास में है, तो जिन्होंने बताया था उन्होंने भी हमसे कहा वहां जाना नहीं कभी। हमने कहा क्यों नहीं जाना, कह रहा मैं तुमसे बड़ा हूं ना। एक सीता जी का जहां पर सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी वहां पे एक मंदिर है, उस मंदिर में जो महंत थे 80-85 साल के होंगे, वो बुद्धिस्ट है वो, लेकिन वो स्थान का देख की देखभाल करते, उनको हमने पूछा कि ये कहाँ पर जगह है जहां पर रखा गया था, उन्होंने कहा वहां जाना ही नहीं है किसी हालत में, कभी वहां जाना नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने तुम्हें कह दिया नहीं जाना। जब हमने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने हमारे ड्राइवर को भी बुला के कहा कि नहीं इनको लेकर नहीं जाना, लेकर नहीं जाना, गलत जगह है वो, वहां पे इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो ये सब सुन के हमारी उत्सुकता और बढ़ी, और हम वहां ढूंढते ढूंढते पहुंचे। जब हम वेलीमाड़ा पहुंचे तो हमने कई लोगों से पूछा कि कहाँ है, लोगों ने मुंह फेर लिए, किसी ने कहा हमें नहीं पता, किसी ने कहा हमें आप भाषा बोल रहे हो, हमको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती, हमें तमिल भी नहीं आती, तो लोगों ने बताने से मना कर दिया। बाद में एक परेरा करके वहां पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमको मिला, उसको हमारे ड्राइवर ने जब पूछा तो सुरेश करके बहुत बहुत अच्छा ड्राइवर कम गाइड था, हमारा मित्र ही हो गया बाद में वो, उसने जब पूछा तो उसने कहा कि मैं ऑटो रिक्शा में आपको लेके जाता हूँ, मेरे साथ चलिए। तो हमने ऑटो रिक्शा तो नहीं, हमारे पास एक मिनी वैन थी, हमने उसको बिठा के वहां पर लेके गए और देखा। तो बाद में पूछा कि हमें लोग बता क्यों नहीं रहे थे, तो परेरा ने हमको बताया कि वो इसलिए नहीं बता रहे थे, लोग मानते हैं कि हमारा जो राजा रावण है वहां पे अभी भी निद्रासीन है, वहां पे रहता है, सो रहा है वहां पे, तो अगर लोग वहां जाएंगे और अननेसेसरी शोर मचाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, और अगर वो डिस्टर्ब होकर उठ गया तो श्रीलंका का क्या हाल करेगा या बाहर की दुनिया का क्या हाल करेगा हम नहीं कह सकते, इसीलिए हम बताते नहीं किसी को कि वहां पे ऐसा है। तो ये उस गुफा की बात है, स्त्रीपुरम नाम से जगह है वेलीमाड़ा के पास।
राइट, ओके, ये तो मतलब काफी शॉकिंग है, बिकॉज अगर लोग इतना ज्यादा उस चीज में बिलीव करते हैं कि वो रास्ता ही नहीं बता रहे, तो मतलब आई कैन इमेजिन, मतलब वाओ, ऑसम। सो सर, एक लास्ट पार्ट पे आते हैं बुक का भी, जैसे ये लास्ट पार्ट है, आपने उसमें एक वो साधु के बारे में आपने बताया है, तो पहली बात तो उस साधु को ढूंढने में आपको बहुत मेहनत लगी क्योंकि वो टेंपल नहीं मिल रहा था, ऐसी कुछ कहानी चल रही थी, एंड
दिस ऑल अयोध्या की बात कर रहे हैं, रामघाट की बात कर रहे हैं,
मुझे याद नहीं है कौन सा वाला पार्ट,
आखिर में वहां है जहां पे हमने वो कहानी ढूंढी की लक्ष्मण जी को क्यों उन्होंने मृत्यु दंड देने का क्यों किया था, प्रावधान क्यों हुआ, क्यों वो परिस्थिति निर्माण हुई, वही वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें कहानी ऐसी आती है कि ऋषि अतिबल के एक शिष्य रामचंद्र जी से मिलने आए, और उन्होंने ये कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ रामचंद्र जी से, ऋषि अतिबल का को मैं संदेश लाया हूँ, लेकिन उनकी आज्ञा ये है कि किसी भी परिस्थिति में जब तक मैं ना कहूं तब तक इस दरवाजे को खोल के अंदर कोई नहीं आएगा, और इसीलिए और जो आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर ये मानते हो तो मैं अंदर आता हूं। प्रभु रामचंद्र तो समझ गए कौन है, तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया, और वो अतिबल के शिष्य नहीं थे, वो काल थे।
ओके।
जो प्रभु रामचंद्र जी को ये बताने आए थे कि आपका आपके अवतार का समय समाप्त हो गया है, प्रभु अगर आप यहाँ रहना चाहे तो रहे, ये तो आप ही तो विश्व के कर्ता धर्ता है, अगर आप कहते हैं मैं इसी अवतार में रहना चाहता हूँ तो आप रह सकते हैं, लेकिन वहां भी तो लोग आपका आपके लिए रुके हुए हैं,
वेट कर रहे।
आपका समय हो गया, ब्रह्मा जी ने भेजा आपको बताने के लिए कि आपका अवतार का समय समाप्त हो गया, अगर आप अपने प्रभु रूप में आना चाहे तो आ सकते हैं, बताने का मेरा कार्य था। लेकिन चूंकि मैं ये नहीं किसी को बता सकता कि आपका समय समाप्त हो गया, आपके जाने का है, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता, ये तो आपने डिसाइड करना है। बाकी लोगों के लिए तो मैं काल हूं, मैं सोचता हूं कि इसका जाने का टाइम हो गया, आपका समय तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता, मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, तो मैं बाहर ये नहीं बता सकता था कि मैं काल हूं और मैं आपसे मिलने आया हूं, इसीलिए मैंने ऋषि अतिबल का मैं शिष्य हूं ऐसा कहकर बोला, ये बात सारी अंदर हुई। लेकिन ये कहानी हमें पता नहीं चली, क्योंकि कहीं भी कहानियों में ये सब कुछ है नहीं कि बात क्या हुई थी अंदर, ऋषि अतिबल के शिष्य से क्या बात हुई थी, वो ये पता नहीं था हमें, तो हम उसको ढूंढ रहे थे।
ओके।
खैर, संदर्भ लक्ष्मण जी का संदर्भ ये है कि उस समय लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे थे और वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे रामचंद्र से मिलना है अभी, तो उस पर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं कोई सेवा कर सकता हूं तो मुझे बताइए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र तो इस समय किसी के साथ मिल रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अंदर ना जाने दूं। तो उन्होंने कहा देख मैं तो अभी जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को अन्नकूट में अन्न देना है और मैं ये प्रभु रामचंद्र से ही बात कर निर्णय लूंगा कि किस तरह से वो दिया जाएगा, और अगर मुझे अंदर नहीं जाने देगा तो सबसे पहले मैं तुझे शाप देकर भस्म करूंगा और बाद में तेरी पूरी अयोध्या नगरी को भी भस्म कर दूंगा।
ओके।
तब लक्ष्मण जी ने इसमें ये समझा कि मेरी जान जाए तो जाए, पूरी अयोध्या क्यों जाए, इसलिए इस शाप से डर के वो अंदर गए और उन्होंने वो जो मंथना चल रही थी उसको उसके अंदर उन्होंने विघ्न डाला, और उस विघ्न डालने के लिए क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी पहले ही कह चुके थे कि जो भी इसमें विघ्न डालेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, इसीलिए वो लक्ष्मण जी उस समय मृत्युदंड के अधिकारी हो गए।
करेक्ट।
ये उसकी कहानी है।
करेक्ट।
तो एनीवे ये कहानी तक हम एक तो इसके बाद की कहानी कि जब मृत्युदंड देने की बात आई तो प्रभु रामचंद्र को बहुत हुआ कि जिस भाई ने अपना जीवन पूरा मेरे साथ समर्पित कर दिया, मेरे एक शब्द के पीछे सब परिवार सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आया, एक सेकंड भी उसने विश्राम नहीं किया 14 साल तक, इसे मैं कैसे मार दूं। तो जब ऐसा प्रश्न हुआ तो प्रभु तो, और अगर मैं नहीं मारता तो रघुकुल रीत चली जाती है कि वचन दिया है और वो वचन उन्होंने निभाया नहीं तो हम क्या करें। तो जब ये दरबार बैठा तो गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि आप केवल लक्ष्मण को ये कह दीजिए कि इसके बाद जीवन काल में तो मुझसे नहीं मिल सकते, इससे तुम्हें उसको मारना भी नहीं पड़ेगा, और अगर वो आपसे नहीं मिल सकता तो जिंदा मृत्यु बराबर ही है उसके लिए, उसके लिए तो जीवन है ही नहीं तो मृत्यु है, तो इसीलिए आप उसको ये कह दीजिए अगर आप उसको ये दंड देंगे तो उसके लिए मृत्यु के बाद बराबर हो गया और आपको भाई की हत्या भी नहीं करनी पड़ी। ये जब लक्ष्मण जी ने सुना तो उन्होंने ये सोचा कि इस परिस्थिति में तो जीवन का कोई उपयोग ही नहीं है, अगर मैं जीवित हूं लेकिन मैं प्रभु रामचंद्र के दर्शन नहीं कर सकता तो मेरे जीवन की क्या उपयोगिता है, तो इसीलिए वो गए, उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली।
ओके।
तो ये इसकी पूरी कहानी है। अब ये जो यहां तक की कहानी है, उन्होंने जल समाधि ली यहां तक की कहानी है, लेकिन वो अंदर क्या चल रहा था इसकी कहानी नहीं मिल रही थी। तो हमने ये सोचा अगर हम उस घाट पे जाएंगे जहां से जल समाधि ली थी, या जहां पर आखिर में जाके सरयू नदी में प्रभु रामचंद्र और बाकी भी सारे जो महारथी थे वो सब विष्णु रूप में प्रभु रामचंद्र के विलीन हो गए थे, अयोध्या के पशु पक्षी सारे रहवासी अपने अपने जिस योनि से वो आए थे उस योनि में वापस चले गए, और कुछ प्रभु रामचंद्र में विष्णु रूप में विलीन हो गए, हम वहां जाके पता करेंगे तो पता चलेगा। हमने घाट के एक कोने से दूसरे कोने तक हर मंदिर में जाके पूछ लिया कि ये क्या घटित हुआ था आप बता सकते हैं, कोई भी हमें नहीं बता पाया। हमें लगा कि वहां पे पूरे घाट में जितने पंडित श्री थे उनमें से कोई भी इस बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था। तो हमने आखिर में ये सोच लिया कि भाई ये तो नहीं आ सकता किताब में, मतलब समझे कि हमने करीब करीब 4 या 5 घंटे इस बात में लगाए, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाना, एक पंडित जी से पूछना, उनकी ना के बाद वो कहते थे मुझे नहीं पता, शायद उनको पता हो, वहां जाना वहां पूछना, ये सब पूछा हमने, ये सब पूछ के आखिर हमने छोड़ दी, अब अपने से नहीं हो, ये कहानी अपने को मालूम चलने वाली नहीं है तो क्या करें। तो हम एक जगह आए, चलो कुछ खाते हैं, फिर चलेंगे, अब हम अपने नॉर्मल रूप में आ गए लेखक रूप से, तो हमने सोचा पानी पूरी अच्छी मिल रही है और आइसक्रीम मिल रही है तो खाते हैं। तो जब हम आइसक्रीम वहां पानी पूरी खा रहे थे आइसक्रीम खा रहे थे वहां खड़े हुए, तो एकदम सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जिसमें दूर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया, बहुत बुजुर्ग सा लग रहा था। तो मुझे लगा कि विक्रांत चल के पूछते हैं, सर इनको भी बताओ। तो नॉर्मली पहला रिस्पॉन्स हमारा सबका ये था कि अरे इतनी जगह पूछ लिया, आप क्या एक जगह और पूछ के करोगे। बट आई वन ऑफ दोस गाइस के जो अगर मतलब पीछे लग जाए तो लगे लग ही जाएगा टाइम, जब तक सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं होंगे तब तक छोड़ोगे। तो हम उस मंदिर में मैं और विक्रांत चले गए, वहां पे एक साधु बाबा बैठे थे जो बिल्कुल एकदम दुबले पतले दो हड्डी के, और यहाँ से झुके हुए यहाँ से झुके हुए, मतलब उनसे ये कि पूरी उनकी जो वो था शरीर था वो ऐसे कंप्रेस हुआ पड़ा था, ऐसे ही बैठे थे वहां पे उस मंदिर में, छोटे से मंदिर के अंदर। तो उनके हमने चरण छुए, उनसे हमने बात पूछी। तो पहले तो उन्होंने सारा अपना वृतांत, अपनी तबीयत का बताया, अपने बारे में बताया, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, ये वो, उनकी पूरी बात हमने आधे पौने घंटे सुनी। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि भाई बेटा किस लिए आए थे मेरे पास। तब हमने उनको बोला कि हमने ये बताया था, तब उन्होंने हमें ये कहानी बताई।
ओके,
तो ऐसे देखिए कई जगह कहानियां आपको मिलती है, वो हमें मिलनी थी, इसलिए हमारा आइसक्रीम खाने का मन किया, हम उस ठेले पे खड़े हुए जहां से हमें ये मंदिर दिखाई दिया, इसलिए हमें साधु बाबा दिखे, इसलिए हम उनके पास। तो हमारी सिर्फ उसमें ये है कि हमने पेशेंस रखा, जब तक वो साधु बाबा बोलते रहे अपनी कहानी, अपनी तबीयत के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में बताते रहे, हमने उनको इंटरव्यू नहीं किया। जब उनका पूरा निकल गया कि कोई मेरे से बात करने आया है, उन्होंने पूरी बात मेरी सुनी है, तब हमने उनको एक प्रश्न पूछा। जब एक प्रश्न पूछा तो हमारी कहानी आ गई और हमने तुरंत पुस्तक में डाल दी। तो इस तरह के कई लोग हमें मिले जो बहुत इंटरेस्टिंग लोग भी थे, कई लोगों के साथ हमें बहुत पेशेंटली भी डील करना पड़ा, लेकिन ये तो एक किसी भी कार्य को करने निकलते हैं तो ऐसा तो होता ही है,
पार्ट एंड पार्सल है।
हाँ।
तो सर बिफोर मतलब ये एपिसोड हम एंड करें, एक मैं कह सकता हूँ कि मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन है या उस टाइप का क्वेश्चन है, वेर जैसे आपने अभी कहा कि हमें बहुत सारे लोगों से हम मिले, कुछ लोगों ने हेल्प की, किसी ने नहीं की, किसी के साथ में पेशेंस दिखाना पड़ा, फिर हमारी हेल्प हुई, और कुछ ऐसा सिचुएशन थे जब आपने गिव अप कर दिया था पर स्टिल वो स्टोरी मिली आपको, तो डू यू थिंक कि किसी तरह से वो एक हायर एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ थी इस पूरे इसमें, दैट इज व्हाई बुक को इतना सक्सेस मिला?
वो तो अभी भी लगती है, वो तब थी नहीं, तब भी थी, अब भी है। सी, ये सारी अगर आप मतलब फिलोसॉफिकल लेवल पे देखते हैं तो ये तो एनर्जी सारी आपके अंदर ही है ना। आप तो पूर्ण हर अणु रेणु में प्रभु का वास है, चाहे प्रभु राम के रूप में हो, प्रभु कृष्ण के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हर जगह वो एक ब्रह्मा, एक जो ब्रह्म है वो तो पूरे हर एक अणु रेणु में है, तो आपके अंदर भी है, सिर्फ आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है, आपको उसमें विश्वास करने की आवश्यकता है। तो जब आप किसी इस तरह की जर्नी को करते हैं तो उस समय आपको इस बात का पूरी तरह से एक अनुभूति हो जाती है कि ये सब कुछ है और ये एनर्जी मेरे अंदर है और इस एनर्जी के अंदर मैं विश्वास रखता हूँ, तो मेरे हाथ से कुछ भी अच्छा काम हो सकता है।
भजते हरि पवन तू। Yeah.